अध्याय 55 बालक शमूएल। यह अध्याय पहला शमूएल 1:2 आयत 1 से 11 पर आधारित है। एप्रेम पर्वत का एक लेवी एलकाना प्रभावशाली और धनवान व्यक्ति था, जो परमेश्वर से प्रेम करता था और उसका भय मानता था। उसकी पत्नी हन्ना एक धर्मपरायण स्त्री थी। नम्र और सीधा सादा उसका चरित्र ईमानदारी और अत्याधिक विश्वास से परिपूर्ण था। ये धर्मी जोड़ा उस आशीष से वंचित था जिसे प्रत्येक इब्री हृदय से चाहता था। उनके घर में शिष्यत्व की किलकारियों का सुख नहीं था और अपने नाम को चिरायु बनाने की अभिलाषा ने पति को कई औरों की तरह दूसरा विवाह रचने को विवश कर दिया। लेकिन परमेश्वर में विश्वास के अभाव में उठाया गया ये कदम प्रसन्नता लेकर नहीं आया। पुत्र और पुत्रियां परिवार में जुड़े, लेकिन परमेश्वर की पवित्र संस्था की सौम्यता और सुख को आघात पहुंचा था और परिवार की शांति भंग हो गई थी। दूसरी पत्नी पनिन्ना ईर्ष्यालु और संकीर्ण सोच वाली स्त्री थी और उसके व्यवहार में घमंड और निर्लज्जता थी। हन्ना के लिए आशा समाप्त हो चुकी थी और जीवन थकाने वाला बोझ था। फिर भी उसने इस कठिन समय का बिना शिकायत करे दीन होकर सामना किया। एलकाना निष्ठापूर्वक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था। शिलो की आराधना अभी भी की जाती थी, लेकिन परिचर्या में अनियमितताओं के कारण उस पवित्र स्थान पर जहां लेवी होते हुए उसे उपस्थित होना था, उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वह अपने परिवार सहित नियम समारोह में आराधना करने और बलि की भेंट चढ़ाने जाता था। परमेश्वर की आराधना से संबद्ध पवित्र समारोह के होते हुए भी जिस दुष्ट आत्मा ने उसके घर को शापित किया था, वही दुष्ट आत्मा बलपूर्वक घुस आई। धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के बाद परंपरागत रूप से पूरा परिवार औपचारिक पर आनंदमयी भोज के लिए इकट्ठा हुआ। इन अवसरों पर एलकाना अपने बच्चों की मां को एक भाग उसके लिए और उसके सभी पुत्रों और पुत्रियों के लिए देता था, और हन्ना को उसने सम्मान के प्रतीक के तौर पर दुगना भाग देता, ये बताने के लिए कि उसका उसके प्रति प्रेम वैसा ही था जैसा कि पुत्र होने पर होता। फिर दूसरी पत्नी ने ईर्ष्या से आग बबूला होकर परमेश्वर की अधिकतम कृपा दृष्टि की पात्र होने पर वरीयता का दावा किया और हन्ना की संतान रहित अवस्था को परमेश्वर की उसके प्रति अप्रसन्नता का प्रमाण बताते हुए उसको ताना दिया। ये प्रतिवर्ष दोहराया जाता जब तक कि हन्ना की सहन शक्ति समाप्त हो गई। अपने दुख को छुपाने में असफल वह बिलख बिलख कर रोई और समारोह छोड़कर चली गई। उसके पति ने उसे व्यर्थ में सांत्वना देनी चाही, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? हन्ना कुछ नहीं बोली। जिस बोझ को वह किसी सांसारिक मित्र के साथ नहीं बांट सकती थी, उसने उसे परमेश्वर पर डाल दिया। उसने विनम्रता से विनती की कि वह उसकी कमी को दूर कर उसे पुत्र के रूप में एक अनमोल उपहार दे, जिसे वह पाल कर बढ़ा करे और उसके लिए प्रशिक्षित करे। उसने विधिवत शपथ ली कि यदि उसकी विनती सुनी गई तो वह अपनी संतान को उसके जन्म से ही परमेश्वर को अर्पण करेगी। हन्ना मंदिर के चौखट के पास पहुंची और वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। उसने बिना आवाज किए परमेश्वर से मन ही मन प्रार्थना की। उस बुरे समय में आराधना के ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते थे। धार्मिक उत्सवों पर भी श्रद्धाहीन सहभोज और नशा असामान्य नहीं थे, और महायाजक एली ने हन्ना को देखकर सोचा कि वह नशे में थी। हन्ना को उचित रूप से डांटने के लिए वह कठोरता से बोला, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। दुखी और भौचक्की हन्ना ने नम्रतापूर्ण उत्तर दिया, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। महायाजक विचलित हो गया, क्योंकि वह परमेश्वर का दास था और डांट के स्थान पर उसने हन्ना को आशीष दी, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वरदान दे।
हन्ना की प्रार्थना स्वीकार हुई, उसे वो वरदान प्राप्त हुआ जिसकी उसने प्रार्थना की थी। उसने बच्चे को देखा और उसका नाम शमूएल रखा। जिसका तात्पर्य है परमेश्वर से मांगा हुआ। जब शिशु अपनी मां से अलग होने योग्य हो गया, उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उसने अपने पुत्र पर संपूर्ण मातृप्रेम न्यौछावर किया। प्रतिदिन जब वो अपने बच्चे की बढ़ती हुई क्षमता को देखते हुए और बालोचित बातों को सुनती, उसे अपने पुत्र पर और भी प्यार आता। वो उसका इकलौता पुत्र था, स्वर्ग से मिला हुआ विशेष उपहार। लेकिन उसने इस पुत्र को परमेश्वर के लिए समर्पित खजाने के तौर पर प्राप्त किया था, और वो दाता को उससे वंचित नहीं रखेगी जो उसी का था। एक बार फिर हन्ना अपने पति के साथ शिलो गई, और परमेश्वर के नाम में अपने अनमोल उपहार को उसने एली को दे दिया और कहा, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण करती हूं। इज़राइल की स्त्री की भक्ति और विश्वास से एली बहुत प्रभावित हुआ। एली स्वयं एक अत्यंत पक्षपातपूर्ण पिता था। जब उसने इस मां के बलिदान को देखा कि किस तरह वो अपने इकलौते पुत्र से अलग हुई ताकि वो उसे परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर सके, वो श्रद्धा और दीनता से भर गया। उसे स्वयं के स्वार्थपूर्ण प्रेम के लिए ग्लानी हुई, और उसने दीन भावना और आदर के साथ परमेश्वर के सम्मुख दंडवत किया और आराधना की। मां का हृदय हर्ष और महिमा से भर गया, और परमेश्वर के प्रति धन्यवाद प्रकट करने के लिए तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। प्रेरणा के प्रभाव में हन्ना ने प्रार्थना की और कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मग्न है, मैं अपने परमेश्वर में स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करती हूं। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेरे की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों को तोलने वाले हैं शूरवीरों के धनुष। टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे न रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माताएं घुलती जाती है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। वो कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के स्तंभ यहोवा के है और उसने उन पर जगत को धरा है। वो अपने भक्तों के पांवों को संभालता रहेगा, परंतु दुष्ट अंधेरे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वो उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त की शक्ति को बढ़ाएगा। हन्ना के शब्द भविष्य सूचक थे, वे दाऊद की ओर, जिसे इज़राइल के राजा के रूप में शासन करना था, संकेत कर रहे थे और परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त से भी संबंधित थे। सबसे पहले एक निर्लज और झगड़ालू स्त्री के घमंड का वर्णन करते हुए ये गीत परमेश्वर के शत्रुओं के विनाश और उसके बचाए हुए लोगों की निर्णायक विजय की ओर संकेत करता है। शिलो से हन्ना चुपचाप रामा में अपने घर लौट आई। उसने अपने पुत्र शमूएल को महायाजक के निर्देशन में परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने के लिए प्रशिक्षित होने के लिए छोड़ा। जब से वो समझने लगा था, हन्ना ने अपने पुत्र को परमेश्वर से प्रेम करना और उसका आदर करना और स्वयं को परमेश्वर का मानना सिखाया था। उसके चारों तरफ की प्रत्येक परिचित वस्तु के माध्यम से उसने शमूएल के विचारों को सृष्टिकर्ता की ओर ले जाने का प्रयत्न किया था। अपने पुत्र से अलग होकर भी इस ईमानदार मां की परवरिश समाप्त नहीं हुई। प्रतिदिन उसकी प्रार्थना का विषय उसका पुत्र होता था। प्रत्येक वर्ष वो अपने ही हाथों से उसके लिए पोशाक बनाती थी, और जब वो अपने पति के साथ आराधना के लिए शिलो जाती, तब वो शमूएल को वो पोशाक देकर अपने प्रेम का स्मरण कराती।
उस छोटी सी पोशाक का प्रत्येक धागा एक प्रार्थना से बुना हुआ था कि वो पवित्र, शिष्ट और सत्यवादी बने। उसने अपने पुत्र के लिए सांसारिक महानता नहीं मांगी, वरन उसने हार्दिक रूप से विनती की कि वो उन ऊंचाइयों पर पहुंचे जिनका मूल्य स्वर्ग जानता है, और वो ये कि शमूएल परमेश्वर का आदर करे और अन्य लोगों को आशीषित करे। क्या प्रतिफल मिला हन्ना को, और उसका उदाहरण सत्य निष्ठा के लिए कितना अच्छा प्रोत्साहन है। अनमोल अवसर, अत्यंत लाभप्रद अनुकूल परिस्थितियां प्रत्येक मां के सुपुर्द की गई है। वे सीधे सादे कर्तव्य, जिन्हें महिलाएं थकाने वाले कार्य समझने लगी हैं, उन्हें श्रेष्ठ व महत्वपूर्ण कार्यों के रूप में देखा जाना चाहिए। अपने प्रभाव से संसार को आशीषित करना मां का विशेषाधिकार है, और ऐसा करने से उसके हृदय को प्रसन्नता मिलेगी। वो अपने बच्चों के लिए सुगम रास्ते तैयार करती है, जिस पर चलकर वे धूप व छाया से होकर स्वर्ग की महिमावान ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। लेकिन एक मां अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण पवित्र उदाहरण के अनुसार करने की आशा तभी कर सकती है जब वो अपने निजी जीवन में मसीह की शिक्षा का अनुसरण करने का प्रयास करती है। ये संसार भ्रष्ट प्रभावों से व्याप्त है। फैशन और रिवाज नौजवानों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि एक मां निर्देश देने, मार्गदर्शन करने या नियंत्रण में रखने के कर्तव्य को अनदेखा करती है, तो ये स्वाभाविक है कि उसके बच्चे अच्छाई से मुंह मोड़कर बुराई को अपना लेंगे। प्रत्येक मां प्रायः अपने उद्धारकर्ता के पास ये प्रार्थना लेकर जाए, हमें सिखा, इस बच्चे का पालन पोषण हम किस रीति से करें और इसके साथ हम क्या करें। परमेश्वर के वचन में दिए गए निर्देशों का पालन करने से उसे आवश्यकता अनुसार बुद्धिमता प्राप्त होगी। बालक शमूएल बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। हालांकि शमूएल का युवा काल परमेश्वर की आराधना के लिए समर्पित मंदिर में बीता, वो संसार के दुष्प्रभाव और पापमय उदाहरणों से अछूता नहीं था। एली के पुत्रों को परमेश्वर का भय नहीं था, और ना ही वे अपने पिता का आदर करते थे। लेकिन शमूएल ने ना तो उनकी संगति की इच्छा रखी और ना ही उनके गलत रास्तों को अपनाया। वो हमेशा वैसा बनने का प्रयास करता था जैसा परमेश्वर उसे बनाना चाहता था। ये प्रत्येक युवा का विशेषाधिकार है। परमेश्वर प्रसन्न होता है जब छोटे छोटे बच्चों भी स्वयं को उसकी सेवा टहल के लिए समर्पित करते हैं। शमूएल को एली की देखरेख में रखा गया था, और उसके आचरण की मनोरमता ने वृद्ध याजक के हार्दिक प्रेम को जागृत किया। शमूएल नम्र, उदार, आदरपूर्ण और आज्ञाकारी था। एली अपने निजी पुत्रों की स्वच्छता से दुखी था, और अपने प्रभार यानी शमूएल की उपस्थिति में उसे आशीष, सुख और चैन मिलता था। शमूएल कोमल और सहायक प्रवृत्ति का था, और किसी भी पिता ने अपने पुत्र से इतना नम्रतापूर्ण प्रेम नहीं रखा होगा जितना कि एली ने इस युवक के साथ किया। ये अपने आप में अतुल्य था कि राज्य के मुख्य न्यायाध्यक्ष और एक साधारण बालक के बीच ऐसा हार्दिक प्रेम हो। जैसे जैसे एली पर वृद्धावस्था की कमजोरियां आती गईं, वो अपने पुत्रों की आचरणहीनता व कुकर्मों के कारण पश्चाताप से भर गया, और शमूएल ने उसे दिलासा दिया। लेवियों के लिए 25 वर्ष की आयु से पहले अपनी विशेष सेवाओं को आरंभ करना परंपरागत नहीं था, लेकिन शमूएल पर ये नियम लागू नहीं हुआ। प्रत्येक वर्ष महत्वपूर्ण दायित्व उसके सुपुर्द किए जाते थे, और जब वो बालक ही था, उसे सन का एपोद पहनाया गया, जो प्रतीक था इस तथ्य का कि वो पवित्र तंबू के कार्य के लिए समर्पित था। मिलाप वाले तंबू में सेवा टहल के लिए जब उसे लाया गया, वो बालक ही था, लेकिन तब भी उसे उसकी क्षमता के अनुसार परमेश्वर की सेवा टहल में करने के लिए कार्य दिए जाते थे। प्रारंभ में ये अत्यंत साधारण व कभी कभी अरुचिकर भी होते थे, परंतु शमूएल प्रत्येक कार्य को अपनी योग्यता अनुसार और पूरे मन से करता था। जीवन के प्रत्येक कर्तव्य में उसका धर्म झलकता था। वो स्वयं को परमेश्वर का दास और अपने कार्य को परमेश्वर का कार्य मानता था। उसके प्रयत्न स्वीकार्य होते थे, क्योंकि वे परमेश्वर के प्रति प्रेम और उसकी इच्छा पूरी करने की सच्ची इच्छा से प्रेरित होते थे। इस प्रकार शमूएल पृथ्वी और आकाश के प्रभु के साथ सहकर्मी बना और परमेश्वर ने उसे इज़राइल के महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने के लिए समुचित बनाया। यदि बच्चों को ये मानना सिखाया जाए कि प्रतिदिन के सीधे साधे कार्यों को दीनता से पूरा करना उनके लिए ईश्वरकृत कार्यप्रणाली है और एक शिक्षण संस्था के समान है, जिसके माध्यम से उन्हें सत्यनिष्ठ और दक्षतापूर्ण सेवा के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और तब उनका कार्य रुचिकर और सम्मान योग्य प्रतीत होगा। यदि हम प्रत्येक काम को ये मानकर करें कि वो परमेश्वर के लिए है तो तुच्छ से तुच्छ कार्य भी मनमोहक प्रतीत होता है और पृथ्वी पर के कार्यकर्ताओं को उन पवित्र प्राणियों से जोड़ देता है जो स्वर्ग से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। इस जीवन की सफलता और आने वाले जीवन की सफलता नगण्य बातों पर सच्चे हृदय व कर्तव्य निष्ठा से ध्यान देने पर निर्भर करती है। चाहे वो सबसे अमहत्वपूर्ण हो चाहे सबसे महान, परमेश्वर के लिए किया गया प्रत्येक कार्य पूर्णतया संतोषप्रद होना चाहिए। जिन हाथों ने ग्रहों को आकाश में स्थापित किया उन्हीं हाथों ने अति निपुण कौशल से नरगिस के फूलों को बनाया। जिस प्रकार परमेश्वर अपने क्षेत्र में सिद्ध है उसी प्रकार हमें हमारे क्षेत्र में सिद्ध होना है। एक सुदृढ़ गुण संपन्न चरित्र की संतुलित संरचना दायित्व के व्यक्तिगत कार्यों से होती है। हमारे जीवन के छोटे से छोटे व बड़े से बड़े विवरण में विश्वसनीयता चरितार्थ होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में अखंडता, स्वामी भक्ति और दया के छोटे छोटे कार्य जीवन के मार्ग को सुखद बनाते हैं। और जब पृथ्वी पर हमारा कार्य समाप्त होगा तो ये ज्ञात होगा कि प्रत्येक तुच्छ कार्य यदि निष्ठा से किया जाए तो वो एक अच्छा और कभी न नष्ट होने वाला प्रभाव डालता है। हमारे समय के युवा भी परमेश्वर की दृष्टि में शमूएल की तरह श्रेष्ठ हो सकते हैं। अपनी मसीही अखंडता को निष्ठापूर्वक बनाए रखने से वे सुधार के कार्य को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। वर्तमान में ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता है। परमेश्वर के पास उन सब के लिए काम है। मानवता और परमेश्वर के लिए मनुष्य ने इससे बढ़कर प्रतिफल कभी नहीं पाया जितना कि वर्तमान में वे लोग प्राप्त कर सकते हैं जो उस दायित्व के प्रति सत्यनिष्ठ होते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें सौंपा है।